1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको यहां बुलाया और लगातार 17 वर्षों तक ज्ञान सरोवर में रह के आपने वहां के रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि आदि को बहुत सुचारू रीति से चलाया। और उसके बाद वर्ष 2010-11 में शांतिवन में सेवाओं का विस्तार होता गया तो बाबा ने आपको नीचे बेस दिया। तो वहां पर रहकर तीनों ही कॉम्प्लेक्स में आप अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं, राजयोग शिक्षिका के रूप में, भट्टी की प्रशिक्षिका के रूप में और साथ ही साथ एसएमएल ट्रेनर के रूप में भी। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और समय समय पर देश विदेश में बाबा के सेवाओं अर्थ भ्रमण करते रहते हैं। अपने युवा काल में आपने युवा पद यात्राओं में भी अपना योगदान दिया और साथ ही साथ बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग द्वारा 1996 में आयोजित कार रैली का भी आपने बहुत सुचारू रूप से संचालन किया। बहुत ही प्रतिभावान, बाबा के मुरली से बहुत रुचि और एक एक पॉइंट की गहनता में उतरते हैं। तो आज भी हमारा जो बाबा का स्लोगन था, किसको याद है स्लोगन आज का? मनन शक्ति के आधार से ज्ञान के खजाने को अपना बना लो तो सर्व विघ्न दूर हो जाएंगे। तो कैसे ये कार्य होता है, कैसे हम ज्ञान के खजाने को मनन शक्ति के आधार से अपना बनाएं, या दूसरे शब्दों में कहें कैसे हम ज्ञान स्वरूप बने, कैसे हम गुणमूर्त बने ताकि विघ्न सदा के लिए विदाई ले लें। तो हम सुनते हैं इस विषय पर दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। पांडव भवन के पावन मनभावन परिसर में आप सबको बहुत सुंदर मौका मिला है। नेचुरल योगी बनने का, मधुबन के कण कण में बाबा और मम्मा और दादियों के, क्योंकि उन्हों की ये तपोभूमि कर्म भूमि, तो यहाँ के हर कण कण में इनकी यादें समाई हुई है। यहाँ हमें योगी बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, नेचुरल बाबा याद आते हैं। और कभी कभी ही ऐसा मौका मिलता है, पांडव भवन में रहने का तो मौका ही नहीं मिलता है। प्यारे बाबा ने हमें भक्ति का फल ज्ञान दिया। भक्ति में भगवान के प्रति भावना थी, श्रद्धा थी, समर्पण भी था। भक्ति में भी कितना समय धन लगाते हैं ना, पर ज्ञान नहीं था, सही समझ नहीं थी। बाबा ने आकर आदि मध्यांत आलोक परलोक रचयिता रचना का संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया। भक्ति में भी अनेक ऋषि मुनि संत हुए, चिंतन तो उन्होंने भी बहुत किया और हर एक ने अपना चिंतन समाज के आगे रखा। कहा ही जाता है श्रुति और स्मृति, जो भी भक्ति के शास्त्र बने हैं वो श्रुति के आधार पर, जो एक दो से सुना, जो पहले पूर्वज हो गए उन सब से सुना, तो श्रुति के आधार पर और स्मृति के आधार पर जो कुछ याद आया और जो कुछ सुना उसी के आधार पर शास्त्रों की रचना हुई। इसलिए हर एक ने अपनी अपनी मतें सुनाई, लिखी शास्त्रों के रूप में। बाबा ने नहीं बीच में बताया था कि क्राइस्ट के जाने के बाद बाइबल बना। जिस समय धर्म स्थापक आते हैं, ज्ञान देते हैं, एक नए विचार देते हैं, उस समय कोई शास्त्र नहीं बनता है, वो अपने नए विचार देते हैं। इब्राहिम के बाद बुद्ध आए, इब्राहिम ने जो कहा वो कोई रिपीट नहीं किया बुद्ध ने, उसने अपने नए विचार दिए। तो परिणाम तो यही हुआ कि अनेक मतें हो गई, जिसको जो समझ में आया, अनुभव में आया, उसको उन्होंने प्रतिपादित किया, उनके फिर शास्त्र बने। तो कितने धर्म, संप्रदाय, मठ, पंथ और उनके कितने शास्त्र। बाबा कहते हैं ना, सूत मूंज गया, धागा उलझ गया, सत्य तो मिला ही नहीं। भाई ये हॉल है, मैं आप सबसे पूछूं कि भाई इसमें कितना लोहा यूज हुआ होगा, कितना सीमेंट लगा होगा, कितनी ईंटें लगी होंगी। आप अपने अपने नॉलेज अनुसार अनुमान लगाएंगे और अंदाजे से बताएंगे कि अबाउट इतना लगा होगा, पर एग्जैक्टली क्या कितना लगा वो तो बनाने वाला वो ही कह सकता है। ऐसे ही इस दुनिया के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, कर्म, कर्म फल, सुख दुख, पुरुषार्थ प्रारब्ध, जन्म मरण, कितनी बातें हैं। हर एक ने अपने चिंतन और अपनी साधना के अनुसार जो उनको समझ में आया वो बताया। सत्य कौन बताएगा? मालिक बाबा ही बता सकता है। तो बाबा ने आकर के वो सत्य हमें बताया। तो जब ये निश्चय हो जाता है कि बाबा आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं, क्योंकि परमात्मा ही दे सकता है। बाबा कहते हैं ना कि भाई और सब किराएदार या और जो भी है मकान का पोछा रंग लगाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत एडिशन करेक्शन करेंगे, पर टोटल खत्म करके नया बनाने का अधिकार किसको है? मालिक को है। तो बाकी जो भी आए उन्होंने पोछा पोछी की, सुधार किया, रिनोवेशन किया, एडिशन करेक्शन किया, पर टोटल नई दुनिया कौन बना सकता है? बाबा बना सकता है। इसलिए बाबा आकर के स्थापना का भी ज्ञान देते हैं, विनाश का भी ज्ञान देते हैं, क्योंकि ये दोनों कार्य बाबा कराते हैं ना। इसलिए कलयुग अंत तक तो अनेक मतें हुई, लोग मूंझ गए, और यही कारण है कि आज तक भी भगवान को ही कहते हैं ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय। जब इतने ग्रंथ है, शास्त्र है, किताबें हैं, चिंतक है, लेखक है, ऋषि मुनि हैं, परमात्मा को ही क्यों कहते? असतो मां सतगमय। तो स्पष्ट है ना कि भगवान ही आकर के मूल सत्य ज्ञान देते। हम सबका ये सौभाग्य है कि हम रोज भगवान से पढ़ते हैं। भल हम अभी आए, परंतु वो ही मुरलियां जो बाबा ने चलाई थी वो ही हम सुन रहे। परम पिता ने सत्य ज्ञान दिया, आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने मंथन करके, मनन चिंतन करके, नए नए तरीके से, नए नए ढंग से बाबा ने हमें ज्ञान सुनाया, निश्चय बुद्धि बनाया। अगर इतना विस्तार से बाबा नहीं समझाते तो हमें कैसे समझ में आता? तो ब्रह्मा बाबा की कमाल और भगवान का दिया हुआ ज्ञान अज्ञानी समझ सके। कहते हैं ना कि गीता का ज्ञान जब दिया जा रहा था तो वो कौन था? धृतराष्ट्र तो अंधा था ना, तो वो पूछता है संजय को कि भाई वहां क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान था तो उसने बताया। अब ये यादगार गायन किसका है? कौन संजय है? कौन संजय? पुराने भाई बताओ। जगदीश भाई जी, बाबा ने उनको संजय नाम दिया था। भगवान का ज्ञान एज इट इज, जरा भी मनमत न मिक्स कर, वो सत्य ज्ञान लोग समझ सके उस रीति से चिंतन करके किसने परोसा? जगदीश भाई। तो इन दो आत्माओं का रोल देखो, कितना सुंदर मनन चिंतन किया इन्होंने। भगवान ने तो मूल सत्य ज्ञान दिया ना, पर उसकी पूरी गहराई और विस्तार पूर्वक ब्रह्मा बाबा ने ब्राह्मण बच्चों को और जगदीश भाई जी ने दुनिया की अज्ञानी आत्माओं को परोसा। बाबा साकार में थे तो हमेशा कहते थे कि मैं रोज ताजा भोजन बनाकर बच्चों को खिलाता। ब्रह्मा मां ताजा भोजन बना के खिलाते, क्योंकि रोज मंथन करके बाबा मुरली चलाते थे। देखो, बाबा कोई प्रोफेसर नहीं थे, वो तो एक व्यापारी थे, पर दिव्य बुद्धि की कमाल। इसलिए बाबा के बारे में दादियां बताती कि बाबा ये नहीं देखते थे कि ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। बाबा ये नहीं देखते, बाबा ये देखते थे कि ये बच्चा शुद्ध बुद्धि कितना है, पवित्र बुद्धि कितना है। बाकी बुद्धि तो बाबा ही दे देता है ना। प्रैक्टिकल खुद का भी अनुभव है, दादियों का भी देखा कि कई बार एक के बाद एक इतना सेवा कारोबार होता है कि हमें टॉपिक पर मंथन करने की मार्जिन भी नहीं मिल। कई बार लास्ट मोमेंट तक क्लैरिटी नहीं होती मुझे कैसे शुरू करना है, पर जो बाबा की गद्दी पर बैठते हैं और जो 3 मिनट योग करने का हमारा जो सिस्टम है, बस उसमें बाबा लास्ट मोमेंट ऐसा टच कर देते हैं कि टोटल चेंज ही हो जाता। क्या मैंने सोचा था वो नहीं, कोई नया ही पॉइंट बाबा देते। तो ये अनुभव है कि बाबा हमें बुद्धि देते हैं। अधिकतर हम बहने छोटी आयु में आए सेंटर पर, पढ़ते थे और आ गए। हमें कोई कारोबार का क्या अनुभव था, कुछ भी नहीं था। बाबा ने सब कुछ सिखाया, बस बाबा से लगन हो तो बाबा सब कुछ सिखा देते। तो हम सबका फाउंडेशन ज्ञान है। भक्ति में भावना है, श्रद्धा है, पर सही ज्ञान नहीं है तो वो अंधश्रद्धा होगी। सत्य ज्ञान पाने के बाद जब हमारे में बाबा के प्रति इतनी ही भावना श्रद्धा आती है तो वो एक निश्चय समर्पण की ताकत बन जाता है। अब चाहिए, हमें ज्ञान मिल चुका है, सत्य हमने समझ लिया है, अब हमारी पूरी भावना, श्रद्धा, विश्वास, निश्चय बाबा में होना चाहिए। बहुत जल्दी बाबा की मदद का अनुभव हम कर सकते हैं। और इसलिए माताएं बाबा की बहुत मदद लेती हैं, क्योंकि इनकी श्रद्धा, निश्चय, प्यार बहुत अनन्य होता है। पर हम सब योगी आत्माएं हैं। मैं समझती हूं अब हमारे में स्त्री पुरुष का भान नहीं होना चाहिए। जैसे वृंदावन के लिए कहा जाता है कि वहां कृष्ण ही एक पुरुष है, बाकी सब गोपियां। मीरा जब वृंदावन में गई तो एक मंदिर में उनको जाने नहीं दिया कि यहां स्त्रियां नहीं आ सकती है, पुरुष ही आ सकते। तो मीरा ने ये जवाब दिया था कि मैं तो समझती थी कि वृंदावन में कृष्ण ही एक पुरुष है, बाकी तो सब गोपियां ही हैं। आपको अभी तक भी पुरुष भान है? जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम सब सजनिया है ना, तो कितना हमें आत्मभिमानी। बहने माताएं तो बहुत अच्छा अनुभव कर लेती, परंतु भाइयों को देह भान से ऊपर उठना पड़े तो ये अनुभव हम कर सकते। जब इतनी लगन, इतना निश्चय, तो हमें घूम फिर के बस बाबा, बाबा का ज्ञान, बाबा की सेवा, बस, और किसी बात में बुद्धि जाती ही नहीं। जैसे दादियों के बारे में सुनते हैं ना, हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा। बड़ी दादी हो, जानकी दादी हो, मनोहर दादी हो, रतन मोहिनी दादी, कोई भी दादी, दिन में घूम फिर के बस मुरली उठाकर बैठेंगे, मुरली पढ़नी है। तो जब हमारी बुद्धि बाबा के ज्ञान से भरपूर हो जाती है, फिर हमारा मनन चिंतन उसी पर चले। कोई मेहनत की बात नहीं है, क्योंकि बुद्धि ज्ञान से भरपूर हो जाती है ना। शुरू में हम रिप्लेस करते हैं, बुद्धि हमारी तेरी मेरी दुनिया भर की बातों से भरी हुई थी। जब ज्ञान में आते हैं, नए नए हैं, तो कहते हैं ना, बाबा की याद में बैठते हैं, फिर भी और विचार आ जाते, क्योंकि इतना गहरा ज्ञान नहीं, हम डूबे नहीं हैं। जब बुद्धि भरपूर हो जाती है तो शुरू में ये रिप्लेसमेंट का काम चलता है कि और विचार आएंगे, फिर हम बुद्धि को खींच के बाबा से लगाएंगे कि नहीं, अभी मैं इस चिंतन के लिए बैठी हूं, बाबा की याद के लिए बैठी हूं, और बातें मुझे नहीं सोचनी, फिर हम बुद्धि को ले। बस थोड़े समय की मेहनत के बाद जब हमारी बुद्धि बाबा के ज्ञान से भरपूर हो जाती है, फिर ऑटोमेटिक ज्ञान का चिंतन, मनन चलता रहता है। एक है, बाबा हमें समझाते हैं, ये तो हमारा भाग्य है कि बाबा लॉजिकली भी समझाते हैं, धर्म की दृष्टि से भी समझाते हैं, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, हर दृष्टि से बाबा हमें समझाते हैं, और हम बाबा से कन्विंस हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं कि बाबा सत्य बता रहे हैं। जब सत्य समझ में आ जाता है फिर बुद्धि कहीं भी नहीं भागेगी और किसी से आपकी बुद्धि प्रभावित नहीं होगी। बाबा के ज्ञान से सत्य के प्रभाव में बुद्धि रहेगी। फिर हम खुद भी, बाबा कहते हैं ना कि विचार सागर मंथन कर, मुरली में कई बार आता है ना, अपने आप से बात करो। तो एक है कि बाबा समझाते, दूसरा हमारी दादियों ने भी चिंतन करके कितने क्लासेस कराए। पर देखो ब्रह्मा बाबा की यूनिकनेस कि आज कितना भी हम चिंतन करें, क्लासेस कराएंगे, पर बाबा जैसी मुरली कोई नहीं चला सकता। इतने पढ़े लिखे देश विदेश के बाबा के बच्चे हमने देखा, और कुछ नहीं, बाबा की मुरली से बेहद प्यार है सब, क्योंकि वो एक ऐसा खजाना है। एक तो वो आत्मा नंबर वन आत्मा ड्रामा की है ना, बल अंतिम जन्म में एक साधारण रूप में, परंतु हम जानते हैं ना कि कोई ऐसे वैसे रास्ते चलते साधारण आत्मा के तन में कोई भगवान नहीं आते हैं। कई ऐसे बन बैठे हैं ना आजकल, कई कहते हैं ना भाई बाबा ने कहा है ना साधारण रूप में, ऐसे ऐसे वैसे साधारण रूप नहीं, नंबर वन आत्मा के अंतिम जन्म के साधारण तन में बाबा आते हैं। तो वो आत्मा तो कितनी ऊंची आत्मा, ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा आज की मुरली में आप सबने देखा ना कितनी बार बाबा ने कहा इसको याद नहीं करो, इसको याद नहीं करो। अब रोल वही है कि रोज सामने उनको ही बैठना, इनके मुख से ही मुरली सुननी है, और ये भी अटेंशन रखना है ब्रह्मा बाबा को कि उनके अंदर किसी को फंसाना नहीं। कितना बड़ा जवाबदारी का रोल ब्रह्मा बाबा का रहा। गुरुओं ने तो अपने में ही फंसाया ना, वो तो और ही कहते हैं हमारी पूजा करो। हम कुंभ मेले में डेढ़ मास सेवा में गए थे, हमने हर पंथ संप्रदाय के टेंट में सेवा के लिए जाते थे, तो हर कोई अपनी पूजा कराते थे। और यहां ब्रह्मा बाबा साधारण तन भी, शिव बाबा में सबको खींचना भी है, अपने में फंसाना भी नहीं है। कितना शक्तिशाली कार्य बाबा ने किया। आज बाबा की मुरलियां ना हो तो हम रोज क्या सुनते, आज हम सबका आधार क्या है, मुरली है। और कोई मिले ना मिले पर मुरली जरूर मिलनी चाहिए। और आखिर ड्रामा अनुसार मोबाइल के द्वारा सबको पर्सनल अब मुरली मिल गई, सबकी इच्छा पूरी हो गई। नहीं तो शुरू में तो मिलती ही नहीं थी ना। पर बाबा ने देखा बच्चों की लगन है, तो हम इतना अच्छी तरह मुरली का अध्ययन करें, अध्ययन माना स्टडी, सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, पढ़ना सुनना समझना, मुख्य पॉइंट्स लिखना, रिवाइज करना, औरों के साथ रूढ़िहान करना और अभ्यास में लाना। इसको कहते हैं स्टडी करना। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो ऐसे थोड़ी सिर्फ टीचर पढ़ाते हैं वो सुनते हैं, नहीं, खुद भी पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, तब जाके याद रहता है और एग्जाम में यूज करते हैं। तो हम भी बाबा के गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भी अध्ययन करना है, स्टडी करना। बाबा ने बहुत साधारण शब्दों में लेकिन मूल सत्य ज्ञान दिया। देखो, इतने धर्मात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, संत हुए, पर पार्ट ब्रह्मा बाबा का। उन्होंने अपनी अपनी फिलॉसफी दी। बाबा ने अपनी फिलॉसफी नहीं, शिव बाबा का ज्ञान दिया। साधारण शब्दों में दिया। उन्होंने विद्वत्ता की भाषा में, संस्कृत में, अलंकारिक भाषा में ज्ञान दिया, जिसके कारण सामान्य जनता समझ नहीं सकी। ये इतिहास में लिखा हुआ है कि महावीर बुद्ध ने लोकल भाषा में ज्ञान दिया और पुस्तकें रची तो उनका प्रभाव बढ़ गया। हिंदू भाई बहनों का क्या हुआ, संस्कृत कोई समझ नहीं सकते, इसलिए पंडितों ने, विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने मोनोपोली कर ली कि आप नहीं समझ सकते हैं, हम आपको समझाएंगे। तो लोग आधारित तो हो गए, उन्होंने अपना महत्व बढ़ा दिया। इतिहास तो जानते हो ना कि भक्ति में फिर क्या क्या हुआ। बाबा ने सरल शब्दों में ज्ञान दिया। हमारे अनपढ़ भाई बहने भी मुरली पढ़ पढ़ के हिंदी सीख गए, है ना? मैं आपको बताऊं, हम नाइन्थ में जब थे तो ज्ञान में आए, उस समय हम हिंदी की एक्स्ट्रा एग्जाम्स देते थे। कईयों को पता होगा, हिंदी विनीत, कोविद, हिंदी पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके उनकी एग्जाम्स होती थी। तो ज्ञान से पहले मैंने हिंदी पहली दूसरी की एग्जाम दी थी, फर्स्ट क्लास आती थी, परंतु ज्ञान में आए और हमारे लौकिक पिता माता ने घर में नियम बना दिया, सबको मुरली में बैठना ही है, सुबह शाम योग करना है और मुरली जरूर सुननी है। हमारी हिंदी इतनी इंप्रूव हो गई, हमने हिंदी तीसरी की एग्जाम दी, हम गुजरात फर्स्ट आए। सिर्फ बाबा की मुरली से, क्योंकि बाबा अपने अनुभवों से हर बात बताते हैं ना, तो जनरल नॉलेज भी इतना बढ़ा कि ऐसे वगैरह लिखना, विचार विस्तार लिखना, ये सब अच्छी तरह लिख सके। तो बाबा ने साधारण शब्दों में ज्ञान दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई साधारण बातें हैं, ये मूल सत्य ज्ञान की बातें। बहुत विवेक संगत तर्कयुक्त लॉजिक, बहुत सिंपल लॉजिक बाबा का होता है, परंतु बहुत कन्विंस करने वाला लॉजिक होता है। बुद्धि सहमत हो जाती है, तो ज्ञान का खजाना बढ़ता है। फिर हरेक की अपनी बुद्धि है, हरेक का अपना विवेक है, हरेक का अपना रीडिंग है, हरेक का अपना चिंतन है, अनुभव है, फिर वो उसमें ऐड हो जाता है बाबा के ज्ञान में। हम किसी को समझाते हैं तो अपने अनुभव से समझाते हैं ना, अपनी बुद्धिमता से समझाते हैं, तो हमारे वो लॉजिक्स उसमें ऐड हो जाते हैं। तो जितना अच्छा अध्ययन करेंगे उतना अच्छा चिंतन चलेगा। कैसे चिंतन चले सवाल ही नहीं है, क्योंकि चिंतन करना आत्मा का स्वभाव है कि नहीं? कोई भी बात आप सुनते हैं, जानते हैं, फिर आपका चिंतन उस पर चलता है ना? पहले दुनियावी बातों का चलता था, अब बुद्धि ज्ञान युक्त बन गई तो ज्ञान का चिंतन। बाबा ने समझाया, दादियों ने समझाया, परंतु जब तक हम अपने विवेक से उस बात को समझते नहीं, स्वीकार नहीं करते, तब तक वो धारणा में नहीं आएगा। बाबा ने कहा, पर मेरा भी वो ही कहना है, मेरी बुद्धि भी यही कह रही है। जब आप एक एक बात से बाबा के साथ सम्मत होते हैं, तब वो जीवन में धारण हो जाता, फिर कोई मेहनत नहीं लगती। जो आज के स्लोगन में बहन ने बताया ना, कि बाबा के ज्ञान के खजाने को अपना बनाना। भई आप बाजार में जाते हैं, कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो आप क्या करते, खरीद लेते, अपना बना लिया ना, अब वो आपकी हो गई। हमें बाबा का ज्ञान अच्छा लगा, समझ में आया, सत्य लगा, कल्याणकारी लगा, अब उसको अपना बना लिया। वही ज्ञान गुण में बदलेगा, शक्ति में बदलेगा। हमारा लक्ष्य विद्वान बनना नहीं है, पंडित बनना नहीं, हमारा लक्ष्य योगी बनना है। और योगी के लिए गीता में कहा है कि योगी मेरा ही स्वरूप है। योगी माना बाबा का स्वरूप बनना, मास्टर भगवान बनना। और हमारा लक्ष्य वही है ना, कि बाबा जिस ज्ञान गुण और शक्तियों का सागर है, उसी ज्ञान गुण शक्तियों का हमें भी मास्टर सागर बनना। फिर अगर बाय चांस कभी कुछ और भी आप पढ़ेंगे, है ना, कोई और किताबें पढ़ते हैं, अखबारों में भी एडिशन आती है ना, पर्टिकुलर कुछ दिनों पर, समाचार नहीं परंतु स्पेशल एडिशन आती, वो पढ़ते हैं, कोई अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, फिर आपकी बुद्धि ऑटोमेटिक बाबा के ज्ञान को सिद्ध करने वाली पॉइंट्स उसमें से उठा लेगा। क्योंकि दुनिया में भी लोग मंथन करके, उनके पास मूल ज्ञान नहीं है पर मंथन करने की बुद्धिमता की लॉजिक की कला है, फिर अपने आप पिकअप करेंगे कि देखो ये बहुत अच्छा उदाहरण है, इससे बाबा का ज्ञान हम और अच्छी रीति समझा सकते। पर फाउंडेशन पक्का चाहिए, ज्ञान का विस्तार भी चाहिए, ज्ञान की गहराई भी चाहिए। विस्तार माना ऊपर ऊपर फैलते जाना, गहराई माना अंदर जाना। भई आपने 10 जगह 10-10 फुट खोद दिया, इससे पानी नहीं निकलेगा। एक ही जगह 100 फीट खोदो, पानी निकलेगा, वो गहराई। फिर हम स्वयं पुरुषार्थी बन जाएंगे, हमें किसी के कहने की धक्का लगाने की आवश्यकता ही नहीं रही। और जितना ज्ञान गहरा उतना योग की गहरी अनुभूति कर सके। डेप्थ चाहिए ना, भी आज कोई बैचलर करता है, फिर मास्टर डिग्री, फिर पीएचडी, एक ही विषय पर पूरा विस्तार और गहराई। तो बाबा के ज्ञान से बुद्धि को इतना भरपूर कर दें और बातों का आकर्षण नहीं रहेगा और व्यर्थ रुचि नहीं रहेगी, टाइम है घूम फिर के आप बाबा को ही पढ़ेंगे। फिर क्योंकि आपको और व्यर्थ बातों में कोई रुचि नहीं। और जब हमें लॉजिकली कन्विंस करने वाली पॉइंट्स मिलती है तो अपने आप उमंग आता है दूसरे को भी सुनाए, ज्ञान की रू रिहान करे। माया के सूक्ष्म स्वरूपों को परख सकेंगे वहां ही खत्म कर सकेंगे। पहले तो परख आवे ना, ये माया है, तो ज्ञान गहरा होगा तो परख आएगी। हमें कोई भी बात मुश्किल नहीं लगे कि हम किसी के आगे बैठें, प्रॉब्लम सुनाएं, फिर वो हमें समझाएं, वो आवश्यकता ही नहीं पड़े। हम खुद इतने शक्तिशाली और सेंसिबल बन जाएंगे कि हम खुद ही खुद को संभाल सके। तो ये है मनन शक्ति। कितना महत्व है जीवन में स्टडी का। इसलिए बाबा ने शुरू से कहा ना कि ये पढ़ाई है, एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है। ये सत्संग नहीं है दुनियावी रूप का, सिर्फ कथा कहानियां नहीं है, टाइम पास करने की बात नहीं है, सुना न सुना, समझा न समझा। बाबा रोज मुरली में क्या कहते, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सिर्फ सुनाते नहीं है, समझाते हैं। इसलिए अटेंशन से सुनना, अटेंशन से पढ़ना और मुख्य पॉइंट्स नोट डाउन करना कि आज की मुरली से ये 5 पॉइंट, ये 7 पॉइंट, ये 10 पॉइंट सारा दिन मुझे रिवाइज करना है, अभ्यास में लाना है। पॉइंट याद रहेगी तो अभ्यास में लाएंगे ना, नहीं तो अभ्यास क्या करेंगे। कोई पूछेगा आज बाबा ने क्या कहा, तो दौड़ना पड़े, मुरली ढूंढनी पड़े, अरे भाई मुरली दो, क्योंकि याद ही नहीं है कुछ। इसलिए हमारे कोई अधिक किताबें नहीं हैं, शास्त्र नहीं हैं, हमारा तो शास्त्र और शस्त्र यही एक है, बाबा की मुरली। ज्ञान नहीं था, अज्ञानता के कारण अनजाने में कितनी भूले हुई, कितने पाप हुए, कितने व्यर्थ कर्म हुए। तो बाबा की सबसे बड़ी देन कौन सी है, बाबा की सबसे बड़ी देन हम बच्चों के लिए क्या है, ज्ञान। कहीं सोचते हैं बाबा तो ज्ञान ही सुनाते रहते हैं, कुछ और भी थोड़ा दे दे बाबा हमें, परंतु ज्ञान ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान ही सतगुरु की कृपा है। ज्ञान नहीं था तब तो भटकते रहे, आधा कल्प वेस्ट हुआ, क्योंकि सत्य मिला नहीं तो बस भटकते रहे, भावनाओं से चलते रहे, जिसने जो कहा वो करते रहे, सही पुरुषार्थ हुआ ही नहीं। कहीं सोचते हैं कि बाबा रोज मंदिर में जाते थे, उसके लिए कहते थे हैं कि धक्के खाते थे, भटकते थे, अब हम रोज सेंटर में धक्के नहीं खाते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, इसको धक्का खाना नहीं कहेंगे ना, क्योंकि यहां हम समझ पूर्वक पुरुषार्थ के लक्ष्य से आते, वहां तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, आत्मलक्षी, खुद के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। और यहां हर बात में पहले हम स्व की उन्नति के बारे में सोचते हैं कि बाबा का ज्ञान सत्य है, कल्याणकारी है, और तीसरी बात कि जीवन में धारण करना पॉसिबल है। हम धारण कर न सके ऐसी बातें बाबा हमें क्यों कहेगा। बाबा कहें और हम कर न सके तो बाबा का बोलना व्यर्थ हो जाएगा ना, ऐसी बात बाबा कहेगा भी क्यों। बाबा को पता है हम कलयुग अंत में हैं, ग्रस्ती में हैं, हमारे सामने हजारों बातें हैं, बाबा तो जानता है ना, हम लिमिटेड जानते हैं। मेरे जीवन के समझो इतने सालों में जो मेरे अनुभव में आया होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, वो कलयुग में जानती हूं ना, वो तो ऊपर से देख रहा है ना पूरा, हाँ, कि संसार में क्या क्या चल रहा है, उससे तो और रहे माता है ना बाबा को। तो हमें ये निश्चय है कि बाबा सत्य है, कल्याणकारी हैं और बाबा का ज्ञान आचरण में लाना संभव है। कई बाबा से रूढ़ियान करते हैं ना कि बाबा को क्या पता, बाबा गृहस्थी बनता तो पता चलता, हम कैसे ज्ञान में चलते हैं। ऐसे माताएं बात करती हैं ना बाबा से, पर बाबा को सब कुछ पता है। तो पूरी रुचि से स्टूडेंट बनकर आदि से लेकर अब तक बाबा ने जो कुछ पढ़ाया है वो पढ़ो। क्या मैं जानती हूं बाबा के ज्ञान की हर बात मुझे पता है, इसलिए बाबा कहते हैं ना मुरली मिस नहीं करो, क्योंकि आज जो बाबा के चिंतन में बात आई वो हमने मिस कर दी तो फिर हमारी नुकसान हो जाएगा ना। और ज्ञान का बीज बाबा है ये भी पता है, जितना बाबा से बुद्धि लगाएंगे उतना और बुद्धि शुद्ध बनती है, ज्ञान की धारणा और अच्छी होती है। ज्ञान अभ्यास में लाना, आचरण में लाने से ज्ञान गुण में बदलता है। देखो आत्मा का लेसन मिला है वो ज्ञान है, पर इससे गुण कौन कौन से आए, आत्मिक दृष्टि बनी, पवित्रता धारण हुई, अपनापन आया है ना, ये गुण आए ना, ज्ञान से गुण आते और लंबे समय तक गुण कर्म में आते रहते हैं, फिर वो शक्ति बन जाते। ज्ञान से ही अथॉरिटी आएगी, दूसरे को आप अथॉरिटी से समझा सके, ज्ञान से ही स्टेटस मिलता है, ज्ञान से ही पावर आता है। तो बाबा ने कोई बात हम बच्चों से छिपाई नहीं है, सब कुछ ज्ञान का खजाना दे दिया है। अब ये हमारे पर है कि हम बुद्धि में भरें, अभ्यास में लाएं, अनुभव में लाएं और अथॉरिटी बने। ओम शांति। Thank you.
भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है आनंद मगन आत्म पंछी आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख सोचा ना देखा ख्वाबों में कहा नहीं जाता है भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर